يا للكتاب، للكتاب لا تغلو في دينكم، अपने दीन में गुलूव ना करो। गुलूव मतलब क्या? एग्जेजुरेशन। अब देखिए, ये चीज जो थी ना, इसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया पिछली उम्मतों को, क्योंकि वो गुलूव में पड़ गए। यानी उन्होंने अपने दीन के अंदर इतना बढ़ा दिया चीजों को। सबसे पहले एक गुलू क्या हुआ उनका, उनकी तरफ से, फिर उन्होंने कह दिया ईसा अलैहि सलाम नऊज़ु बिल्ला अल्लाह के बेटे हैं। किसी ने कह दिया ईसा अलैहि सलाम जो है ना, वो तीन में तीसरा है, माँ है और मदर, सन और होली गोस्ट और जो भी इस तरह की कुछ बना दिया। ये तीनों ही हैं, तीनों एक है, एक में तीन, तीन में एक, थ्री इन वन एंड वन इन थ्री, इस तरह का पता नहीं क्या ही अजीब ही कॉम्प्लिकेटेड चीज बना के रख दी। अच्छा, फिर कईयों ने कह दिया कि वो ईसा अलैहि सलाम असल में अल्लाह ही है, नऊज़ु बिल्ला, अल्लाह ताला ही जमीन पे उतर आया था ईसा की शक्ल में। यानी तुम पहले ये तो फैसला कर लो कि ईसा अलैहि सलाम है क्या। तो ये इतना इन्होंने गुलूफ किया, और गुलूफ क्या किया, अपने अहबार और रुहबान को इन्होंने रब बना लिया। हम पहले पढ़ के आया ना ये बात, कैसे रब बनाया था, कि जो वो कहते थे उनको, यानी शरीयत साज समझ लिया कि जो लॉज बनाने हैं, जो शरीयत है वो यही बनाएंगे। ये जिसको कहेंगे हलाल है वो हलाल है, जो वो कहेंगे हराम है हराम है। उनके नजदीक यानी उनके अहबार और रोहबान जो थे, राहिब जो लोग थे और उनके जो उलमा थे, उनको ही खुदा का दर्जा दे दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ये जो ये हलाल और हराम के अहकामात बताने वाला है और इसके अलावा कोई ये खुद नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये एग्जेजुरेशन कर दी। फिर और उन्होंने एग्जेजुरेशन क्या की, उन्होंने अपनी किताबों में तहरीफें कर दी, जो मर्जी चाहे खुद ही हुक्म बना लिए। तो इन्होंने बहुत तरह का गुलूव किया, इसको गुलूव कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तगलू फी दीनिकुम, ए अहले किताब अपने दीन में गुलूव ना करो। और यहां से आप देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी को भांपते हुए कि कहीं मेरी उम्मत में ना ये हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इससे इतना वॉर्न किया कि कहीं ये ना हो कि तुम भी ये करने लगो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया है ना कि जिस तरह एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, बिल्कुल उसी तरह तुम पिछली उम्मतों की पैरवी करोगे, उनके यानी कदम ब कदम चलोगे, उनके ये बालिश्त, ये जो हाथ ब हाथ और कदम ब कदम तुम उनको फॉलो करोगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इतना ज्यादा तुम उनको फॉलो करोगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को समझते थे कि कहीं ये ना हो कि मेरी उम्मत में भी कोई लोग ऐसी काम शुरू कर दें। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाजे तौर पे फरमाया, बुखारी के अंदर हदीस भी है, कि मुझे उस हद से ना बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को बढ़ाया। मैं अल्लाह का बंदा हूं, बस तो मुझे उसका बंदा और रसूल ही कहना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इस चीज को महसूस करते हुए फरमाया। फिर आपने फरमाया यहूदो नसारा पे अल्लाह की लानत है, जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। यानी इसमें क्या इंडिकेशन थी, तुम तो मेरी कब्र को सजदा गाह ना बना लेना, उसको ना पूजना शुरू कर देना, मेरी कब्र को, कब्र परस्ती से मना कर दिया। आज उनकी कब्र तो बच गई, अल्लाह ताला ने महफूज रखा, लेकिन बाकी कोई कब्र ही नहीं हमने छोड़ी। मुसलमानों ने तो गुलूफ की इंतहाई कर दी, कोई कब्र नहीं छोड़ी, चाहे वो किसी के गधे की कब्र है, चाहे वो किसी की भैंस की कब्र है। वो पता है ऐसी भी कब्रें हैं, ये आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही मजाक की बात कर रही हूँ, मजाक की नहीं कर रही, वो करने के ये पूछा गया भी कि किसकी कब्र है, कहते हैं ये फला इतने बड़े बुजुर्ग थे उनका गधा मर गया था, ये उसकी कब्र, वहां पे भी आके करते हैं। एक किसी की भैंस की कब्र वो उसको भी पूछते हैं और वहां पे आके मन्नतें मांगते हैं। वो कहीं कब्र देख लेंगे ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी पीछे हटा, वहां से उन्होंने कहा ये कब्र है, वहां पे झंडियां लगा दी और वो चादर भी उसके ऊपर डाल दी, चलो बस कब्र बन गई। अब लोग आए चादरें चढ़ाए और कब्र पूजे, बस ये हमारा हाल हो गया। जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉर्न किया था कि देखो दीन में गुलूफ हुए नहीं, हद से ना बढ़ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हदीस में आता है, किसी आदमी ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे सरदार, सरदार के बेटे, ए हम में सबसे बेहतर और बेहतर के बेटे, तो आपने वहीं पे रोक दिया। फरमाया, लोगो अपनी बातों का खुद ख्याल किया करो, तुम्हें शैतान बहका ना दे। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं, मैं अल्लाह का गुलाम हूं, उसका रसूल हूं, कसम अल्लाह की मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे मर्तबे से बढ़ा दो। हालांकि कुछ उसने ऐसी बहुत ही बड़ी बातें नहीं की थी, हम तो खैर एग्जेजरेशन की इंतहा ही कर देते हैं, हमने तो कोई इंतहा छोड़ी नहीं कि जो हम शेरों में हम कितनी, यानी आप अगर आप नाते सुन लें ना कभी, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इतनी इंतहा करते हैं, और उससे ज्यादा हैरत उन लोगों पे होती है जो बैठे होते हैं और कहते हैं सुबहान अल्लाह भाई वाह भाई वाह, क्या बात कर दी आपने। एक देखिए मैं आपको दो तीन चीजें, दो तीन आपको शेर बताती हूँ ताकि आपको खुद समझ आए ना कि क्या कहते क्या। एक शेर में कहा कि वो खुदा नहीं बखुदा नहीं मगर खुदा से जुदा भी नहीं। अल्लाह हु अकबर, तू गौर शेर क्या होता है अल्लाह के बंदो, जब तुम कह रहे हो वो खुदा से जुदा नहीं, फिर क्या कहते काबे की कुछ ऐसी थी, काबे की उसका मुनकर नहीं हूं मैं, काबे का भी काबा मीठे नबी का रोजा, हर मकान से बाला मीठे नबी का रोजा, अर्शे ऊला से आला मीठे नबी का रोजा। तो अर्श से भी आला जो है ना वो मीठे नबी का रोजा। अल्लाह माफ कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह। वो फिर और शेर है कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, कि अगर अल्लाह ने पकड़ लिया ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा देंगे, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया तो फिर कोई छुड़ा ही नहीं सकता। वो किधर की कहां से ये लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट, कभी कुरान पढ़ा, कभी हदीस पढ़ी, कभी कोई बात इनको समझ भी आती है? ऐसे दरूद बना लिए, नूरुम मिन नूरिल्ला, उनका नूर अल्लाह के नूर से ही है, वो उनका नूर अल्लाह, तो तुमने तो उनको खुदा ही बना दिया, ये अल्लाह के नूर से इनका नूर है, तो ये तो अल्लाह से अलग ही नहीं है। फिर कहते बशर ना कहो उनको, इनको इंसान ना कहो तुम, अल्लाह ताला कुराने पाक में फरमाता है कि वो बशर है। आप ए नबी खुद कह दें, सूरह कहफ हर हफ्ते पढ़ते हो, खुदा के लिए उसकी आखिरी आयत तो पढ़ के देख लो। तो इस तरह के गुलूफ किए गए इस दीन में, जिस चीज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करके गए थे उसी चीज को हमने ये हाल कर दिया है कि आज इनका बस नहीं चलता कि ये कहें कि हम तो मतलब खुदा खुदा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खुदा है। और याद रखे गुलूफ जो होता है ना वो ऐसे नहीं है कि कोई बैड इंटेंशन से ही कर रहा है, या कोई कोई वाकई कुछ कोई बुरी चीज कर रहा है, या बुरा यानी कलमा कह रहा है, वो कहते मोहब्बत में ही है, वो कहते अपनी अकीदत में ही है, मगर उसमें इतना बढ़ जाते हैं कि वो उनको वहां तक लेकर आ जाते हैं जहां पे जो उनका मकाम नहीं है, जो अल्लाह ताला का मकाम है, उनको हय और कयूम समझना शुरू कर देना। अब यहां पे भी आ गए, वहां पे भी है, वहां पे भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी मजलिसों में आते जाते रहते हैं, वो तो फौत ही नहीं हुए, वो तो जिंदा है। तो ये सब क्या है? तो ये आज इबादत में इस कदर गुलूफ हमने कर दिया, यानी देखिए आप दुनिया के भी कामों में अगर गुलूफ करते हैं ना, मिसाल के तौर पे गुलूफ आपने की किया, आपने कहा हंडी के अंदर जो है ना नमक के बगैर तो हंडी पकती नहीं, तो आज मैं दबा के नमक डाल दूं तो वो क्या होगा, जहर बन जाएगा, खाना ही पॉसिबल नहीं होगा। आपने गुलूफ किया ना, हद जितनी थी उस हद से बढ़ा दिया, दीन भी जितना आपको दिया गया है उतने में ही रहे, हद से खुद बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं इसमें हरज क्या है, अब मैं कहना शुरू कर दूं भाई मेराज के दिन मेराज का मैं रोजा रखना शुरू कर देती हूँ, मेराज शरीफ की रात को मैं इबादत की रात बना लेती हूँ, इसमें हरज क्या है? देखिए मैं इबादत ही कर रही हूँ, क्या हरज है इसके अंदर? हरज है क्योंकि आप गुलूव नहीं कर सकते, हद से नहीं बढ़ सकते। इमामों को आपने क्या दिया, मासूम अनिल खता है, वो पैगंबरों के बराबर कर दिया उनको, गुलूफ कर दिया ना, पैगंबरों के अलावा कोई भी हस्ती हो वो मासूम अनिल खता नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से हम पुकारें या अली मदद कह के पुकारेंगे, वो यहीं पे हमें सुन लेंगे, वो सुनते भी हैं हमारी, वो जानते भी हैं, या अब्दुल कादिर जिलानी या गौसे आजम, गौस का तो लफ्ज ही इस्तेमाल करना गलत है। गौस का मतलब होता है मुश्किल कुशा, जो फरियाद रस हो, फरियाद रसी करने वाला हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो एक आदमी ने आके कहा था कि आप अता करने वाले हैं, तो आपने फरमाया नहीं मैं कासिम हूं, मैं सिर्फ तकसीम करने वाला हूं, ये मत कहो आप। उसने क्या कहा था, आप दाता है, आप देने वाले हैं। तो फरमाया नहीं मुझे ये ना कहो। यानी इतने नबी अलैहिस्सलाम केयरफुल होते थे इसमें, और आज देखें ये नात सबसे अच्छी वही है जिसमें गुलूफ का इंतहा ही कर दी जाए और लोग अश अश कर उठते हैं कि हाँ भाई आपने क्या बात कर दी। और खतीब उनको अच्छे समझा जाता है जो इंतहा पे ले जाए। नहीं, एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी जिसके अंदर उनने कहा कि देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा तो उन्होंने किसको देखा वहां पे आग में, किसको देखा बताएं? हजरत अली को देखा कि वो बैठे हुए थे आग, और वो उन्होंने उनको बचाया था। फिर इसी तरह एक और जगह ये कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा तो वहां पे अर्श पे कौन बैठा हुआ था? अली। तो अली अल्लाह ताला है तो वो अली ही है। और लोग इसके ऊपर इंतहा है अफसोस की, जिहालत इस कदर ज्यादा है कि लोग बजाय इसके कि इस चीज को समझे कि ये गलत बात कर रहे हैं, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं। तो गुलूव किसी तरह भी सही नहीं है। गुलूव एग्जेजुरेशन करना दीन में, ये कोई फखर की बात नहीं है कि हम तो बहुत अच्छी बात बड़ी कर रहे हैं। वो हद के अंदर रहो। एक तीन सहाबा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए थे, जिन्होंने मेरे से एक ने कहा था आपसे सल्लम कि उसका रात का हाल पूछा, रोजे का हाल पूछा, इस तरह पूछा। वो एक ने उनमें से कहा कि मुझे, मैं तो अब सारी जिंदगी सारी रात नमाज पढ़ता रहूंगा। एक ने कहा मैं सारी जिंदगी रोजा रखता रहूंगा। एक ने कहा मैं तो कभी शादी ही नहीं करूंगा। तो आपसे सल्लम ने क्या हमको कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, बड़ी अच्छी तुम्हारी नीयत है, ये कहना चाहिए था ना? नहीं, आपने फरमाया नहीं, हद से नहीं बढ़ना है। मैं देखो शादी भी करता हूं, मैं रात को सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, नहीं भी रखता। तो जितना दीन ने बताया उसकी हद के अंदर रहिए, बाहर ना निकले। अकीदत अपनी जगह, मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी होनी चाहिए कि अपनी जान से भी ज्यादा हो, लेकिन ये मतलब नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम को लेके अल्लाह ताला के बराबर बैठा दें। अस्तगफिरुल्लाह। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीमात दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये हाल था कि आपने अपने सहाबा को इस चीज पे भी पसंद नहीं किया कि वो आपके लिए खड़े हो जाए करें जब आप आए, इतना भी नहीं पसंद किया। आज कुछ लोगों की वीडियो पता चलती है कि उनके आगे उनके मुरीद आके सजदा करते हैं, बाकायदा पूरा सजदा। यानी अगर मैं अपनी आंखों से ना देखा होता इन वीडियोस में तो मैं कभी यकीन ना करती। पूरा सजदा जमीन के ऊपर अपना माथा रखते, और वो फिर उनको यानी इस तरह जैसे पैट करते हैं कि हाँ अब तो मतलब सही है, तो फिर वो उल्टे पाँव ही पीछे जाते हैं कि पीठ भी ना हो जाए हमारे इस मतलब की क्या क्या इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी के लोग कहते थे कि हम आते थे आपकी मजलिस से, हमें पता नहीं चलता था कि इनमें नबी अलैहिस्सलाम कौन से। इतनी भी नहीं अपने आप को वो देते थे कि मैं कोई ऐसी पोजीशन इख्तियार करूं या कोई ऐसी ऐसी मजलिस मेरी हो जिसमें पता चले कि हाँ ये है। जब हिजरत करके आए थे लोगों को नहीं पता था कि अबू बकर सिद्दीक ये है अल्लाह के नबी या ये है। जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला पंखा झलने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तब लोगों को पता चला कि ये है अल्लाह के रसूल, उन्होंने तो नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया और हम क्या कर रहे हैं? जहां पे उनकी इताअत की बात आती है वहां पे कुछ भी नहीं। और कि हमने तो नबी छोड़ के, हमने तो उन नबियों की जो पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है लोग, उनको भी क्या मर्तबे और मकाम दे दिए कि उनके सामने सजदे करने लगे और पीठ नहीं करनी उनके आगे। और वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, वो कहते हैं ठीक है ये सही है जो कर रहे हैं। इसी से आप अंदाजा कीजिए कि उन लोगों की जहालत का क्या हाल होगा जो सजदे करवा रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनकी जहालत का क्या हाल होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि दीन की बात को आगे पहुंचाएं, खुदारा आगे पहुंचाएं, आगे लोगों को एजुकेट करें, उनको कुरान की तरफ बुलाएं, दीन की तरफ बुलाएं। हम सब का फर्ज है ये जिहालतें देख देख के फिर इसके ऊपर अफसोस करने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जब तक हम ये ना समझें कि इसको देखने के बाद हमारे अंदर एक एनर्जी भर जानी चाहिए कि अब मैंने बैठना नहीं, ये चेंज होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये तो बदतरीन चीज होगी। क्या मुझे बताएं आप, एक हिंदू के अंदर और इनमें क्या फर्क रह गया जो एक इंसान को सज्दे करने लगे हुए, क्या फर्क रहा? उन्होंने अपने नाम तो मुसलमानों वाले रख लिए, मुसलमान नहीं है। तो सज्दा तो सिवाय अल्लाह के किसी को जायज ही नहीं। उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, वो तो यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने भी तो सज्दा किया था ना, ये उस चीज की उन्होंने आगे से दलील दे दी। अल्लाह ताला माफ फरमाए, ऐसे जाहिलों से भी अल्लाह महफूज रखे। तो ला तगलू फी दीनिकुम वला तकूलू अलल्लाह इल्लल हक, और अल्लाह के ऊपर कोई बात ना करो मगर हक, जो यानी अल्लाह ने कही है वही कहो, ऐसे ही खुद ही बातें बना बना के अल्लाह की तरफ मनसूख कर देना। अब जैसे ये बात, अब पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत नाजिल हुई इसमें किसी को भी सजदा करना जायज नहीं है। वो तो फरिश्तों ने भी आदम को सजदा किया था, तो हम कह देंगे सजदा तो जायज हो गया। अब कोई किसी को सजदा नहीं कर सकता, झुक भी नहीं सकता, रुकी की पोजीशन में भी नहीं जा सकता किसी के आगे, वो भी एक तरह का सजदा। तो अल्लाह के ऊपर वो बातें ना बांधो जो उसने कही नहीं है, यानी झूठ बांधना। इंसान अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी बात मेरे नाम के साथ बातें लगा के और झूठ कहा जाए, कहां कोई अल्लाह के साथ झूठ बांध ले। ये अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया, अल्लाह ताला तो ये कहता है, अल्लाह को तो ये पसंद नहीं है, या अल्लाह ने ये नहीं। तो अल्लाह पर वो बात ना कहो मगर जो हक है, यानी जो उसने फरमाया उतनी बात कहो। इन्नमल मसीह ईसा बनु मरियम रसूलुल्लाह। अब यहां से ना असल में ईसाइयों के ऊपर रद्द किया गया, जो उनके अकीदा है उसके ऊपर रद्द किया गया कि तुम अहले किताब की, मैंने आपको बताया था ना ये सारी आयतें 175 तक ये अहले किताब के ऊपर, पहले यहूद की बात आई, अब ये जो बातें आ रही हैं इनको आप बहुत गौर से समझें, इसलिए क्योंकि जब आप दावा करेंगे तो खास तौर पे ईसाइयों के साथ जब बात करनी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे दीन के अंदर ईसा बिन मरियम की क्या हकीकत है, हमारा कुरान उनके बारे में क्या कहता है। इन आयात को आप हाईलाइट कर सकते हैं दावा के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया कि ईसा बिन मरियम की क्या हकीकत है, कि इन्नमल मसीह हो, मसीह मसीह कौन है, मसीह ईसा बिन मरियम को ही कहते हैं। क्यों? इसलिए कि मसीह मसा से है, वो मसा करते थे ना, यानी हाथ फेरते थे तो कोढ़ी को ठीक कर देते थे, बीमारों को शिफा हो जाती थी, अंधा देखने लगता था। ईसा बिन मरियम, वो ईसा है मरियम के बेटे, यानी अल्लाह के बेटे नहीं है, ये मतलब है। कुराने पाक में तकरीबन 30 मकामात में ये है कि वो ईसा बिन मरियम कह के बताया गया हर जगह पे, यानी उनका बाप इसका मतलब है नहीं, वरना तो बाप की तरफ मंसूब होते हैं, सिर्फ माँ है। तो ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह, जो रसूल है अल्लाह के, मैसेंजर है। रसूल कौन होता है? जो पैगाम लेकर जाता है, तो वो तो पैगाम देने वाले हैं, पैगंबर बन के आए हैं। पैगंबर का मतलब क्या होता है? पैगाम बर, यानी पैगाम पहुंचाने वाला, तो वो तो मैसेज लाने वाले हैं, वो कोई बेटे तो नहीं है। वह कलिमा तू, और उसका कलिमा है अल्लाह ताला का कलिमा कौन है? अच्छा, अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये जो इनके ईसाई पादरी हैं, इन्होंने दो चीजें ली हैं कुराने पाक से, और उसकी बेसिस पे ये डिबेट करते हैं और कहते हैं कि आपके तो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि वो अल्लाह का कलिमा है। इंसान का जो कलाम होता है वो उसका हिस्सा होता है, उसका जुज होता है, जो आप बात कर रहे हैं वो आपका जुज है, तो वो तो फिर इस तरह वो हो गए। और दूसरी बात जो आगे ये आ रही है, रूह मिन, वो रूह है उसमें से, तो वो तो अल्लाह की रूह है, नाउज बिल्ला। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं आपका तो कुरान कहता है ये, तो अब आपको इस बात का जवाब आना चाहिए कि कलिमा तो हु का मतलब क्या है। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई दफा फरमाया है, इजा अराद शैअन अन यकूला लहू कुन फयकून, जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा फरमाता है तो उसके लिए कहता है कुन, हो जा, तो वो हो जाता है। तो यानी ईसा बिन मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम को किसी हमल के लिए किसी किसी से ताल्लुक की जरूरत नहीं थी वो अल्लाह के कलमा कुन से ही कि हो जा, तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, तो यानी ईसा बिन मरियम जो है वो कलमा कुन है अल्लाह का, उनके लिए कोई आदमी कोई बाप की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मर्द के नुतफे के बगैर ही वो पैदा हो गए अल्लाह के कलमा कुन से, ये मतलब है। मतलब ये नहीं कि अल्लाह का कलाम है कोई ऐसे है, वो तो अल्लाह ताला के कलमा कुन तो हर एक के लिए ही हुआ, अल्लाह ताला के कलमा कुन से और भी चीजें पैदा हुई हैं। अल्लाह ने अपने कलमा कुन से कायनात को बनाया, तो अल्लाह माफ करे हम बाकी चीजों के लिए भी क्या यही कहेंगे फिर? अलकाहा इला मरियमा, उसने ये इस कलमे को मरियम की तरफ इल्का किया, डाला, यानी उनके वूम में ये कलमा कुन की वजह से हमल ठहरा। वह रूह मिन, और रूह है उसकी तरफ से, यानी उसकी तरफ से मतलब है कि अल्लाह की तरफ से रूह है, ये नहीं कि अल्लाह की रूह है, अल्लाह में से रूह है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी फरमाया, मा नफखतु फीहिम मिन रूही, आदम अलैहिस्सलाम को वो फरमाया इनके अंदर, इनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी रूह में से फूंका, तो रूह में से फूंका का मतलब ये नहीं कि अपनी तरफ से, यानी रूह फूंकी, मेरे रूह ही अपनी तरफ से रूह फूंकी, मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने अपनी रूह फूंक दी। तो वरना तो आदम अलैहिस्सलाम भी फिर इसी तरह हो गए। तो बाकी इंसानियत के लिए भी आता है कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर रूह फूंकी अपनी तरफ से, तो अगर इस तरह माना लेने लगे तो फिर तो सारी इंसानियत ही इसमें आ जाती है। तो देखना चाहिए कि बाकी जगहों पे क्या आता है, सिर्फ एक जगह से लेकर इस चीज को नहीं हम कर सकते कि देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी वजह से ऐसे है। आपको पता है कितनी जगहों पर अल्लाह ताला ने इस चीज को वाजे फरमा दिया कि ईसा अलैह सलाम अल्लाह ताला के बंदे हैं, उसके रसूल हैं। आप सूरह कहफ मसलन पढ़ते हैं, आप सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उन लोगों को डरा दें जो कहते हैं, वयुंदर अल्लदीन कालू तखद अल्लाह वलादा, जो कहते हैं अल्लाह ने औलाद ठहराई है, अल्लाह का बेटा है, मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाईहिम, इनको भी नहीं कोई इल्म और इनके आबाओ अजदाद को भी नहीं। काबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम, कितनी बड़ी बात है ये अपने मुंह से निकाल रहे हैं, छोटी बात है, यकूलून इल्ला कज़िब, भाई झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, सिवाय झूठ के इसमें कुछ नहीं है। तो आप एक जगह को लेके कह देना, देखो जी यहाँ पे ये लिखा है, आप बाकी कुरान में जगह जगह देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, लम यलिद वलम यूलद, तो तुम कैसे फिर उनको बेटा कहते हो? तो इससे इन और भी कई जगहों के ऊपर है, जो मिसाल के तौर पे सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने इनके सारे ही उनका रद्द कर दिया। आगे उसके ऊपर बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। फआमिनू बिल्लाहि व रसूली, तो ईमान ले आओ अल्लाह पर और रसूलों पर, यानी सारे रसूलों पर ईमान ले आओ। अब इन ईसाइयों का मसला क्या था, वो सारों को ही मानते थे, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना। और आज कई कहते हैं कि हम ठीक है मानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के रसूल थे, लेकिन सारी इंसानियत के लिए नहीं थे। अब क्या करें, अब उनके पास कोई चारा तुरा नहीं, सारों के लिए नहीं थी, सिर्फ अरबों के लिए थे। तो कुरान उठा के देखो, ये कुरान कहता है कि आप सारी इंसानियत के लिए रसूल, सारी इंसानियत को। अभी ये हमने क्या पढ़ा, या यूहन्नास कहा गया है, अरबों को नहीं सिर्फ कहा गया, कद जाकुम रसूल, सारी इंसानियत तुम्हारे पास रसूल आया है हक लेकर, तुम ईमान ले आओ। तो इस आयत को देखिए आप, इससे पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजे गए थे। वला तकूलू सलासा, तीन ना कहो, तीन मतलब कौन, अल्लाह मसीह और मरियम, या फिर अल्लाह मसीह और रूहुल कुदुस, यही तीन कहते हैं ना, ये ट्रिनिटी का जो इनका अकीदा है, और इसी वजह से इन्होंने ये ऐसे आप देखते हैं ये सर पे करते हैं, फिर राइट और लेफ्ट करते हैं, ये इस तरह से एक क्रॉस सा बनाते हैं। तो ये इनका तीन का जो अकीदा है तसलीस का, तो वला तकूलू सलासा, तुम तीन ना कहो, इंतहू खैरन लकुम, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इसी में तुम्हारी बेहतरी है कि तुम बाज आ जाओ इस अकीदे से, इस शिर्क से, इसे माफी मांग लो, क्योंकि इन्नम अल्लाहु इलाहुम वाहिद। तो आगे तुम कैसे, बदबख्ती की बात है कि रूह मिन कह के तो और कलिमत हु ये इतनी सी बात ले ली, और ये नहीं आगे देखा कि इन्ना मल्लाहु इलाहुं वाहिद, इसी आयत में अल्लाह ताला ने आगे भी तो फरमाया कि अल्लाह इलाह है एक ही, उसके अलावा कोई इलाह है ही नहीं, तुम कैसे उसके साथ ये मिला देते हो कि वो उसका कलमा है और उसकी रूह है, वो तो एक किला है, उसकी रूह में से कोई तो किसी के अंदर चली जाना मतलब उसका हिस्सा होना। तो इला का मतलब क्या होता है? माबूद, इबादत के लायक जो है, ये तो उसका माना ठीक है, मगर इला सिर्फ ये नहीं होता। इला वो जात है जो सारी कुदरतों की मालिक है, सारी ताकतों की मालिक है। जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोई नहीं है जो सारी ताकतों और कुदरतों का मालिक है, सिर्फ अल्लाह ही है। इतनी बड़ी बात बोल के तो फिर एक कलमा गो मुसलमान देखो किधर धक्के खाता फिरता है, कहीं कब्रों पे जाता है, कहता है आप मुझे ही कर दें, और कलमा क्या पढ़ रहा है? इसको कलमे को पता हो ना बेचारे को, तो ये कभी भी ना करे ऐसे, तो कौन बताएगा उसको? आपको पता चल गया, अब आपकी जिम्मेदारी आप बताएं। जो इंसानियत जहालत के अंधेरों के अंदर है, नहीं उनको पता, अक्सरियत को पता नहीं है, ये नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं, अक्सरियत को नहीं मालूम। कोई होंगे ढीठ जिनको पता भी चल जाए वो फिर भी ना माने, लेकिन ज्यादातर को नहीं पता। तो इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद, वो है अकेला जो सारी ताकतों का मालिक है, सारी कुदरतों का मालिक है, वो ही है इबादत के लायक। तो फिर दर दर मत भटको, उस अल्लाह की तरफ आओ। सुबहाना वो पाक है। पाक का मतलब ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं ना कि तहारत को हम पाकी समझते हैं कि भाई मेरे कपड़े गंदे हो गए, ये हो गया, ये तहारत नहीं। सुबहान का मतलब वो वाली पाकी नहीं है। सुबहान का मतलब क्या है? एक्चुअली सबहा कहते हैं तैरने को, तैरना, और जब तैरते हैं कोई चीज तैरती है तो वो दूर चली जाती है ना तैर के, तो यानी हमने अल्लाह को दूर कर दिया हर ऐब से, हर शिर्क से, हर वीकनेस से, हर उस चीज से जो उसकी शान के लायक नहीं है, उससे उसको पाक कर दिया, दूर करार दे दिया। जब हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, व्हाट डज इट मीन? क्या मैंने डिक्लेयर किया कि अल्लाह इन सारी चीजों से जो उसकी शान के लायक नहीं है उनसे पाक है। इसीलिए तो ये इतना बड़ा कलमा है, बहुत बड़ा कलमा है सुबहान अल्लाह। तो सुबहाना हूँ वो पाक है, आप समझ आइए कि क्या मतलब। तो क्या क्या चीजें उसके लायक नहीं? खाना पीना उसके लायक नहीं है, बुढ़ापा उसके लायक नहीं है, कमजोरी उसके लायक नहीं है, जवाल उसके लायक नहीं है, ठीक है? तो जितनी ये कमी की चीजें हैं ना, ये उसके लायक नहीं है। तो हम उन सब से, हम एक एक चीज में नहीं जाते, हम उन सब से उसको पाक कराते देते, ठीक है? अब ये कितनी बड़ी उसकी तारीफ है। वो औलाद से भी पाक है। तो अई यकूना लहू वलद, के हो उसके लिए कोई बेटा, वो इससे पाक है, क्योंकि बेटे की जरूरत तुम्हें हो सकती है, तुम इंसान हो, तुम मुकम्मल नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें बेटे चाहिए कि वो तुम्हारा बाजू बनते हैं, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, तुम्हारे लिए हेल्प करते हैं, तुम्हारी एनर्जी खत्म होने लगती है तो उनकी जवानी शुरू होती है, वो फिर तुम्हारे लिए यानी एक हाथ थामने का जरिया बन जाते हैं, तुम्हारा नाम आले के आगे चलते हैं, ठीक है? वो तुम्हारे लिए, तुम्हें होता है कि तुम्हें कोई कब्र में उतारने वाला हो तो तुम कहते हो हमारे बेटे हो। हाँ, तो अल्लाह ताला के लिए तो इनमें से कोई भी चीज नहीं है, वो तो सुबहान है। फिर उसको बेटे की क्या जरूरत है? तुमने बेटा बना के रखा था उसके लिए, और इसकी गवाही कुरान जगह जगह पे देता है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह मायदा के अंदर कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग कहते हैं अल्लाह ताला के ऊपर कि लकद कफर अल्लदीना कालू इन अल्लाह हुवल मसीह बनु मरियम, ये कहते हैं कि अल्लाह ही मसीह बने मरियम है, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह ताला ही जमीन पे उतर आया मसीह बिन मरियम बन के, जबकि वकाल अल मसीह, और ईसा अलैहि सलाम ने क्या कहा था? या बनी इसराइल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। वो तो आई बनी इसराइल की तरफ थे, वो तो पूरी इंसानियत की तरफ आए ही नहीं थे। उन्होंने तो नहीं कहा था कि मेरा पैगाम लेके सारी इंसानियत को पहुंचाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल के गए, उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा या बनी इसराइल या बनी इसराइल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, और ए बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, इन्नहु मन यशरिक बिल्लाह बेशक जो तुम में से शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, फकद हराम अल्लाह अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है। ये वो कह के गए हैं। फिर अल्लाह ताला ने सूरह मादा में फरमाया, लकद कफर अल्लदीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जो कहते हैं ना तीन में तीसरा है ईसा अलैहि सलाम, अल्लाह तीन में तीसरा यानी ईसा अलैहि सलाम अल्लाह, और जो भी तीसरा किसको कह देते हैं, माँ को कहते हैं मजहब मरियम को या जिब्राइल अलैहि सलाम को कह देते हैं, उन्होंने कुफर किया। वमा मिन इलाह इल्ला इलाह वाहिद, इलाह तो सिर्फ एक ही इलाह है, अकेला वो ही, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये इससे बाज ना आए इस कॉल से जो ये कुफर का कलिमा बोल रहे हैं, तो इनके लिए दर्दनाक अजाब है। सूरह मायदा में आप देख लें 72-73 में अल्लाह ताला ने बता दिया। तो अल्लाह ताला ने इनके अकीदे को कुराने पाक में जगह जगह बताया है कि ईसा इब्ने मरियम खुद क्या क्या के गए, ईसा बिन मरियम के खुद के क्या इस बारे के अंदर उनकी बात थी, उनका पैगाम क्या था, क्या वो भी यही कह के गए थे जो तुम करने लग गए बाद में। जबकि अल्लाह ताला को तो ना किसी औलाद की जरूरत है, ना किसी सहारे की जरूरत है। और फिर आप देखें सूरह मायदा के एंड में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि अल्लाह ताला कयामत के दिन पूछेंगे ईसा बिन मरियम को खड़ा करके कि अंत कुलता लिन्नासी, क्या आपने लोगों से कहा था क्या, इत्तखिदूनी व उम्मिया इलाहीन, कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के मुझे मेरी पूजा किया करो, क्या आपने ये कहा था। यहाँ पे तो आज दुनिया में ऐसे लोग हैं ना जो अपनी पूजा खुद करा रहे हैं, खुद इसके ऊपर खुश हैं कि हमारे हमें सज्दे करो, लेकिन अल्लाह ताला कयामत के दिन ईसा बिन मरियम से फरमाएंगे, इनको दिखाने के लिए अल्लाह को तो पता है हर चीज का कि इन्होंने नहीं कहा, तो उस वक्त ईसा बिन मरियम क्या कहेंगे, सुबहाना का मा यकूनु लिया नकूला मा लैसा ली बिहा का, अल्लाह मैं तू पाक है, मेरी क्या मिजाल है, मुझे क्या जेब देता है कि मैं ऐसी बात कहूं जिसके कहने का मुझे हक ही नहीं है। अल्लाह अगर मैंने कहा होता तो तुझे पता होता, अल्लाह मैंने नहीं इनको ये बात कही, अब इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती। 116 आयत सूरह मायदा की, अल्लाह ताला फरमाते लहू माफिस समावाती व माफिल अर्थ, अल्लाह के लिए आसमान और जमीन सब है, उसको बेटे की क्या जरूरत है। वकफा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह है सारे काम बनाने वाला। देखें अल्लाह हय और कयूम है, उसको मौत नहीं है, हमेशा से है और हमेशा के लिए, तो उसको फिर कौन किसकी जरूरत है जो उसका नाम आगे चलाए या ऐसा करे। लन यस्तनकिफल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाह, मसीह अलैह सलाम ईसा अलैह सलाम हरगिज उनको आर नहीं है इसके अंदर, उनको शर्म नहीं आती बिल्कुल, उनको वो माइंड नहीं करते इसमें कि अन यकून अब्दन लिल्लाह, कि वो हैं अल्लाह के बंदे, यानी उन्होंने इसका खुद कन्फेस किया है। देखिए मैंने जो आपको आयत सुनाई है अभी सूरह मायदा की, तो उसमें क्या उन्होंने क्या फरमाया, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, यानी उनको ये नहीं था कि मिसाल के तौर पे, अब वो कितनी बड़ी बात है जो वो मौजज़े दिखाते थे, मसलन मुर्दा को जिंदा करना, कोड़ी को सही कर देना, अंधे को बीना कर देना, लोगों के घरों में जो वो खाना रख के आए हैं बता देना भाई तुम ये घर में रख के आए, ऐसे इंसान को तो लोग समझ के कितनी उसकी तारीफें करें, आप तो क्या हैं, आप तो ये बड़ी चीज, आप तो फलां, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा लोग मेरी तारीफें करते रहे, चलो करते हैं तो करते रहे अच्छा है, जैसे कुछ लोग अपनी तारीफें खुद करवाते हैं उनको अच्छा लगता, कभी किसी को मना नहीं करते कि ना आप देखें ऐसे ना कहें, सब तारीफ अल्लाह के लिए, वो कहते हैं अच्छा करते रहे, उनको मजा आ रहा होता है इसमें। वो ईसा अलैहि सलाम ऐसे नहीं थे, उनको कोई शर्म नहीं थी इसके अंदर कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का गुलाम हूं। गुलाम देखे ये कैसी बात है कि एक इंसान का गुलाम होने में आर है, बेशक है, लेकिन अल्लाह के गुलाम होने के अंदर इंसान के लिए बुलंदी है। तो वो ये नहीं इसमें शर्म महसूस करते थे कि मैं तो खुद इतनी बड़ी चीज हूं, मैं क्यों किसी का गुलाम बनूं, मैं तो खुद अब जिंदा करने लग गया हूं मुर्दों को, नहीं। अल्लाह का अब्द होना, इसमें उनको कभी कोई आर महसूस नहीं हुई, उन्होंने इसको माइंड नहीं किया, उसको हकीर नहीं समझा। के आप किस चीज को हकीर समझते हैं, आर कब आप समझते हैं, जब आप कुछ ये सोचते हो कि मैं खुद इतनी बड़ी चीज हूं, अच्छा कोई आपको कहे कि आप मेरी नौकर हैं, तो वो आप कहें कि तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली, यानी मैं खुद इतनी बड़ी चीज हूं, मैं तुम्हारी नौकर हूं, ये तो कभी नहीं हो सकता। आप अपनी शान के लायक नहीं इसको समझते ना। अल्लाह ताला के गुलाम होने में इंसान की शान है, और इसमें पैगंबरों को भी कोई आर नहीं है कि वो अपने आप को बड़ी चीज समझ रहे हैं और सोचें कि हम क्यों अल्लाह के गुलामी में आए। ये तो जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा ही हुए थे और गोद में उन्होंने कलाम किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था इन्नी अब्दुल्ला, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, उसका गुलाम हूं। वलल मलाइकातुल मुकर्रबून, और अल्लाह ताला कहते हैं मलाइका को भी कोई इसके अंदर आर नहीं है। वो मलाइका देखें, एक तो मलाइका के सबके स्टेटस एक से नहीं है ना, कुछ मलाइका जो मुकर्रबून है, मुकर्रब है अल्लाह के नजदीक, उसके बहुत करीब है। उनमें कौन है? अर्श को उठाने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सारे फरिश्तों के सरदार है। अर्श को उठाने वाले अल्लाह से कितने करीब है, हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं, कोई कभी गुनाह का तो दूर दूर तक उनसे कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, उनकी उनकी जिंदगी क्या है? तस्बीह करना। जितने भी मलाइके हैं ना, जैसे हमारी सांस चलती है ना, इस तरह उनकी तस्बीह चलती है, हर वक्त वो तस्बीह कर, चाहे कोई बारिश का फरिश्ता है, चाहे कोई मौत का फरिश्ता है, चाहे कोई और कोई रिस्क पहुंचाने का फरिश्ता है, किस कोई तरह के भी फरिश्ते हैं, उन सब की ऐसे तस्बीह चलती है जैसे हमारी सांस चलती है। ठीक है, ये फरिश्तों के बारे में। और जो मुकर्रब फरिश्ते हैं अल्लाह के करीब, उनका तो कितना बड़ा मकाम होगा, वो कितने बड़े हैं और कितने स्ट्रोंग हैं, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ है, वो कितने बड़े फरिश्ते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जो कान उनके कान की लौ से लेके तो उनके कंधे तक का ही फासला 500 साल तक का है, मसाफत का, और एक आसमान दूसरे आसमान से 500 साल की मसाफत पे है। तो सोचें कि इतने बड़े वो फरिश्ते, उनको भी कोई शर्म नहीं है इसमें कि वो सोचें कि हम अल्लाह के गुलाम बन जाएं, उनको नहीं है इसमें शर्म। देखिए गुलाम कैसा होता है बताएं, गुलाम आजाद होता है? नहीं, आजादी का ही तो ऑपोजिट है गुलाम होना, तो गुलाम तो बंदी भी जिंदगी का नाम है। इतने बड़े बड़े सोचे, इतने बड़े जलील कदर पैगंबर हैं ईसा अलैहि सलाम, उनको भी नहीं शर्म है गुलाम होने में अल्लाह की। अच्छा, मुकर्रब फरिश्तों को भी नहीं शर्म है अल्लाह के गुलाम होने की में। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपको तो नहीं कहीं शर्म आती अल्लाह के गुलाम होने में? सोच समझ के बताना मुझे, शर्म तो नहीं आती कहीं? आप कह रहे होंगे नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं शर्म आती, हम तो बिल्कुल इसको माइंड नहीं करते। लेकिन आपको कुछ याद दिलाऊं, क्या बात होती है कि जब हम किसी ऐसी मजलिस में जाते हैं जो बड़ी फैशनेबल लोगों की है, तो हिजाब लेने में हमें बड़ी शर्म आती है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, ये अल्लाह की गुलाम है, तो अल्लाह की गुलाम नजर आने में मैं कितनी बुरी लगूंगी। है ना, याद आया? शैतान के गुलाम होने में मैं अप टू डेट लगूंगी, अल्लाह के गुलाम होने में बड़ी शर्म आएगी, क्या कहेंगे लोग। और हेलो हाय करना, जब कोई ज्यादा कोई पर्सनैलिटी वाले लोग हों, कोई बड़े बड़े लोग हों, तो हेलो हाय करना वो ज्यादा सही है। ये क्या अस्सलाम वालेकुम, तो क्या कहेंगे वो, मुझे तो बड़ी शर्म आती है इस तरह कहते हुए। तो अल्लाह की आप तो अमतुल्ला है ना, अब्दुल्ला तो आदमी होता है, अल्लाह की बंदी बनने में आपको शर्म आई ना? फिर आदमियों को शर्म आती है दाढ़ी रखने में, टखने से ऊपर पैंट्स करने में, नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं शर्म आती थी, आपके सहाबा को भी नहीं आती थी। उस जमाने में भी बादशाहों के इतने लंबे लंबे लिबास होते थे, पीछे पीछे घिसटते आते थे, लेकिन आपने टखनों को नंगा किया कि नहीं, ये तकब्बुर की निशानी है। तो उनको अल्लाह के बंदे नजर आने में कोई शर्म नहीं आई, लेकिन आज आदमियों को शर्म आती है। और भी बहुत सारी जगह देख लें जहां जहां हमें अल्लाह की बंदी नजर आने में, दिखने में, लगने में शर्म आती है, बहुत ज्यादा शर्म आती है। ये लोग क्या सोचेंगे, मुल्लानी है? मुल्लानी क्या है? अल्लाह की बंदी, ये कहलाने में भी मुझे शर्म आती है। ईसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं शर्म आई, मुकर्रर फरिश्तों को भी नहीं शर्म आई, हमें शर्म आती है। जितनी शैतानी कामों से करीब काम है उनमें हमें फख्र महसूस होता है। जो शैतानी काम है ना उनको करने में फख्र महसूस होता है, जो अल्लाह के बंदों वाले काम है उनको करने में शर्म आती है। अब आप खुद ही बता दें कहां कहां शर्म आती है, और जगह सोचे। वो तो कोई हस्तियां थी, इतनी पाक, इतनी बड़ी हस्तियां, चाहे वो पैगंबर हैं चाहे वो मुकर्रब फरिश्ते हैं, इनसे ज्यादा पाक हस्तियां कोई नहीं है। गुनाहों से दूर, तब भी उन्होंने अपने आप को इतनी बड़ी चीजें नहीं समझा कि हम तो अब्दुल्ला नहीं है, हम तो अल्लाह के बंदे नहीं है। लेकिन हम कोई चीज भी नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। गुनाह हमारे यानी ओढ़ना बिछोना है, तब भी हमारा हाल क्या है कि तकब्बुर इतना है, इतनी अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं कि अल्लाह की बंदी बनने में हमें शर्म महसूस होती है। इतनी बड़ी चीज है, हम नीचे हो जाएंगे क्या अल्लाह के बंदे बनने से, या बुलंद होंगे? मैंने तो अभी आपको बताया कि अल्लाह की गुलामी में तो बुलंदी है, इंसानों की गुलामी में रुसवाई है। हम इंसानों के गुलाम बनने में बुलंदी महसूस करते हैं कि वो मुझे देख के खुश हो जाएंगे ना, तो गुलामी तो उसकी की ना फिर आपने। एक महफिल में जाऊंगी, लोगों की नजरें मेरे पर पड़ेंगी, लोगों को बड़ा मैं खूबसूरत नजर आऊंगी, मैं अच्छी लगूंगी लोगों की नजरों में, तो आपने तो उन लोगों की गुलामी कर ली ना फिर। आप तो उनकी खुशी की गुलाम है बेसिकली, कि वो मुझे कैसा देखते हैं, अल्लाह की गुलामी तो ना की। सब इस आईने में अपने आप को जरा रख के देखिएगा और सोचिएगा कहाँ कहाँ मुझे अल्लाह की बंदी बनने में आर महसूस होती है, अपनी शान के लायक नहीं लगता, हकीर लगता है मुझे अपना आप। अल्लाह अकबर। वमन यस्तनकिफ अन इबादति ही व यस्तकबिर, और जो कोई आर समझेगा ना इससे, बेजार होगा इसको अपने लिए शान के लायक नहीं समझेगा, हकीर समझेगा, माइंड करेगा इसको अल्लाह की इबादत को, वह यस तकबिर और तकबर करेगा, क्योंकि ये चीज आती ही तब है जब इंसान के अंदर तकबर होता है कि मैं बड़ी चीज हूं और मैं कहीं नीचे ना झुक जाऊं, मैं कहीं छोटा ना हो जाऊं। फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो अन करीब वो इकट्ठा करेगा उनको अपनी तरफ, सब के सबको। तो इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब ये है कि जमा करेगा उनको अजाब के लिए, उनको सजा के लिए, ठीक है? तो तकब्बुर उसके अंदर है और उसके अंदर अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की इबादत क्या होती है पहले भी बताया था, अल्लाह की इबादत में है ही अपने आप को झुका देना, अपने आप को जलील कर देना, नीचा कर देना। तो जो इस चीज में आर महसूस करता है ना, लोगों के आगे तो झुकते हैं, चलो फिजिकली नहीं झुक रहे लेकिन उनकी जो डिमांड्स हैं उनके आगे तो झुकते हैं ना। आज की डिमांड क्या है, आज के ट्रेंड्स क्या है, आज डिमांड ये है कि औरतें जो हैं वो बेहिजाब फिरे, बेहयाई के कपड़े पहने, ये आज के दौर की डिमांड है। आप उसके आगे झुक गए अगर, तो अल्लाह की बात के आगे तो ना झुके, अल्लाह ताला की तो ये डिमांड नहीं थी। तो आर समझा ना कि अल्लाह की बात मानने में आर समझी, इबादत क्या, अल्लाह की बात मान जाना, झुक जाना उसके सामने, कहना कि मैं नहीं हूं कोई चीज भी, अल्लाह तेरी बात है जो सबसे ऊपर है, मेरी बात क्या चीज हैसियत रखती है, ये है इबादत। इबादत ये है कि इंसान हर काम में हर चीज के अंदर अल्लाह ताला की तरफ देखे कि अल्लाह क्या फरमाता है इस बारे में, उसकी क्या इसके बारे में मेरे लिए रहनुमाई है, ये इबादत। कि इंसान देख देख के चले, ये इबादत होती है। ये थोड़ी है कि बस हमने अल्लाह को मान लिया तो बस ठीक है, हम कलमा पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है। नहीं, जिंदगी के, अब इसको लिख लें, इबादत क्या चीज है, एक आपको मीनिंग दे देती हूँ। जिंदगी के हर मैदान में अपनी सारी गाइडेंस सिर्फ अल्लाह से लेना, सबको छोड़ के सिर्फ अल्लाह से रहनुमाई लेना। क्या खाऊं, क्या पहनूं, किधर जाऊं, किधर कारोबार करूं, किससे कैसा मामला करूं, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहूं, हमसायों के साथ कैसे रहूं, मैं एक माशरे में कैसे उठूं बैठूं, शादी कैसे हो, ब्याह कैसे हो, मर कैसे हो, गम में कैसे रहूं, खुशी में कैसे रहूं, सारी रहनुमाई जिंदगी के हर मैदान में अल्लाह से ले लेना, उसके मुताबिक चलना, यही तो इबादत है। आपने हम तो नहीं किया इबादत को समझा। तो जो तकब्बुर करेगा अनकरीब उसको अल्लाह ताला अपने पास जमा करने वाला है। और देखिए, तकब्बुर करने वालों का तो अंजाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी यानी जरा सा भी तकब्बुर आ गया तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा तकब्बुर को तो छोड़े, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर आ गया। मुतकब्बिरीन यानी जो अपने आप को बड़ी चीज समझते ना। तकब्बुर क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आपको बताई थी, बतरुल हक बतौरा बतरुल हक वगमतुन नास गैन मीन तो, ठीक है। बतरुल हक क्या होता है, यानी हक का इनकार कर देना, हक को नहीं मानना और लोगों को हकीर समझना। हक का इनकार इंसान तभी करता है, मैं नहीं मानू, तब कहता है जब मैं मुझे खुद सारा पता है, मैं क्यों मानू ये बात, मैं आपकी क्यों मानू, मुझे मुझे खुद ही सारा सब चीजों का नॉलेज है, मैं खुद ही बड़ी चीज हूं, वो रिजेक्ट कर देता है। तो जो हक का इनकार करता है, हक को ठुकरा देता है, वो अपने अकीदे को या अपने ख्यालात को इसका मतलब बेहतर समझता है तो ठुकराता है ना। अगर उसको ये लग रहा है कि ये सही बात है तो फिर तो उसको मान ले, लेकिन वो उसको सही नहीं समझता, अपनी बात को सही समझता है, तकब्बुर है उसके अंदर। लोगों को हकीर समझना, क्या चीज है लोग मेरे आगे। फहम्मल्लदीना आमनू आमिलुस सालिहात, और बस वो लोग जो ईमान ले आए और साले अमल करें, फयुवफ्फीहिम उजूरहुम, तो वो देगा उनको उनके अजर। आप देखें अजर क्या चीज होती है, अजर उजरत है, उजरत आप देते ना, उजरत क्या होती है, पेमेंट, सैलरी जैसे आप जिसको कह सकते हैं। तो वो पे आप कब देते हैं किसी को, जब कोई काम करता है, आप किसी साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपने ये मजदूरी करनी है, ये आपकी पे है, जब वो खत्म कर लेता है तो उसको उसकी पे देते हैं। आप देखें अल्लाह ताला ये जो हमारे टूटे फूटे जो भी इंसानों के काम है, जितने भी कर लें, वो हमारे तो खैर किसी उसमें ही नहीं आते, लेकिन कोई बड़ा ही नेक है, कोई बड़ी नेकियां भी कर ले, तब भी मैंने आपको कहा वो अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकता। जितना कुछ अल्लाह ने उसको दिया हुआ है उसको वो पूरा नहीं कर सकता, उसका शुक्र भी नहीं अदा कर सकता। कहाँ ये कि अल्लाह ताला उसकी जो भी मेहनत है, जो भी उसकी कोशिश है, उसके ऊपर फरमाता है अल्लाह उसको उसका अजर देगा। अजर, अजर तो काम के बदले में दिया जाता है, उसकी टूटी फूटी कोशिश को भी अल्लाह देख के कहता है ये तुम्हारा अजर है। हालांकि कयामत के दिन तो अल्लाह ताला बस कुछ भी ना दे इंसान को ना, तब भी वो लाए के हमदो सना है, तब भी वो, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वी डिजर्व दिस, हमें पेमेंट मिलनी चाहिए। पेमेंट किस बात की आपको मिले, पेमेंट तो देखिए एक कोई किसी की मजदूरी करता है तो फिर उसको पेमेंट मिलती है, आपने तो ऑलरेडी इतना कुछ ले लिया हुआ उससे दुनिया में रहते हुए, इतनी जो उसने आपके ऊपर नवाजिशें की उनका उनका आपने बदला दुनिया में पा लिया हुआ है, फिर भी वो कहता है कि मैं अजर दूंगा। बस कुछ बात समझ आई कि नहीं, पेमेंट इसको कहता है, हालांकि ये तो सरासर उसकी मेहरबानी है, उसकी मेहरबानी है कि वो अता कर रहा है, पेमेंट नहीं है, मेहरबानी है, लेकिन अल्लाह उसको भी पेमेंट कहता है। वह यजीद हम मिन फदली, और सिर्फ वो ही नहीं देगा, वो अपना फजल और भी, अपने फजल से और भी ज्यादा देगा। फजल क्या होता है, ऑलवेज एक्स्ट्रा को फजल कहते हैं, एडिशनल जिसको कहते हैं, जायद चीज, ठीक है। ये उसकी रहमत है कि वो उससे भी ज्यादा देगा, अजर भी देगा उससे भी ज्यादा देगा। अल्लाह अगर ये भी कह दे कि बस ठीक है तुमने अगर दुनिया में नमाजें पढ़ी, ये किया, हज किए, मुझे माना तो मैंने भी तो तुम्हें इतना कुछ नवाजा, तुम्हें इंसान बनाया, तुम्हें जिस्म दिया, तुम्हें खाने पीने को दिया, तुम्हें कायम रखा, तो बस पूरा पूरा हो गया। अल्लाह ताला फिर भी जन्नत देता है, अल्लाह ताला फिर भी वहां की नेमतें अता फरमाएगा, ये सरासर उसका फजल है। वह अम्मल्लदीन इस्तंकफू वस्तकबरू, और वो जिन्होंने आर समझा, किस चीज को आर समझा, अल्लाह की इबादत को, वस्तकबरू और तकबर किया, फयुअद्दिबुहुम अज़ाबन अलीमा, तो वो अजाब देगा उनको दर्दनाक अजाब। ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई इंसान अपने आप को बड़ी चीज समझे, क्योंकि तकबर सिर्फ अल्लाह के लायक है, किबरियाई सिर्फ उसकी है, उसकी चादर है, उसकी शान है। शैतान ने जो पहला जुर्म किया था वो यही तो किया था, उसने तकबर किया था, अपने आप को बड़ी चीज समझा था, अना खैरु मिन, मैं इससे बेहतर हूं। तो अल्लाह ताला को ये चीज नहीं पसंद है, देखो इसके इंसान के अंदर ये आए कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं फलाने से बेहतर हूं, नहीं। तो जो भी अल्लाह के बंदे बनने में आर महसूस करता है ना, शर्म महसूस करता है, ये अल्लाह की बात मानना, इसमें तो मैं बहुत हकीर नजर आऊंगी, ये तो बहुत ही छोटी हो जाऊंगी मैं ये काम करके। जो और तकब्बुर करे, अपने आप को बड़ी चीज समझे ये अल्लाह के बात मानने में, अल्लाह ताला के हाँ उसके लिए अजाब है। वला यजिदुना लहुम मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और नहीं वो पाएंगे अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार फिर वहां पे, क्योंकि वहां पे किसी के पास पावर नहीं होगी, हर कोई पावरलेस होगा। ये मालिक यौम दीन तो अल्लाह ही है, और अल्लाह ताला किसी को छोड़ दे तो फिर कौन उसका दोस्त और मददगार बनेगा। या अय्युन नास, ए लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास बुरहान। बुरहान क्या है? बारहा से, बुरहान को मैंने आपको जैसे बताया कि सफेद और चमकदार होना, और वो चीज जो कि ऐसी दलील हो कि जो सारे शकों को शुभात दूर कर दे, और वो क्या है? कुरआने करीम, मिर रब्बिकुम। और बाज ने कहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, क्योंकि आपका आना भी बुरहान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरानी तो थे। तो ऐ लोगो, तुम्हारे पास बुरहान आ गई तुम्हारी रब की तरफ से, वह अनजलना इलैकुम नूरम मुबीना, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए नूरे मुबीन उतार दिया। और बाज ने कहा ये कुरान है, बुरहान से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नूरे मुबीन से मुराद कुरान करीम है। बाज ने कहा नहीं, दोनों से मुराद कुरान है, और वो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए नूर भी कुरान है जो जहालत के अंधेरों से इंसान को निकालता है, गफलतों से इंसान को निकालता है। कुरान से इंसानों की जिंदगियां बदल जाती हैं, कहाँ इंसान अंधेरों में भटक रहा होता है और कहाँ इंसान रोशनी में आ जाता है, लेकिन ना ये सिर्फ कुरान कर सकता है। कुरान है वो जो इंसान को ऐसी रहनुमाई देता है कि जो इसकी तरफ आता है उसको समझ आती है कि किस तरह जिंदगियां बदलती हैं। ये समझने की हेडलाइट की तरह, जैसे गाड़ी की हेडलाइट्स होती है ना, तो आप इस्लाम की गाड़ी में बैठ गए और कुरान इसकी हेडलाइट्स है। हेडलाइट जलती है तो आपको सब कुछ रोशन नजर आने लगता है, और अगर हेडलाइट ही ना हो तो क्या होगा, इंसान अंधेरों में फिर टक्करें खाते फिरते हैं। जब कुरान की रोशनी आती है तो इंसान को हक और बातिल का पता चलता है, ये रोशनी है, नूर है। देखिए अंधेरा हो ना तो इंसान सांप भी रस्सी पकड़ के उठा लेता है, लाइट जलती है तो इंसान को होता है हाय ये तो सांप था, क्या फर्क हुआ, पहले अंधेरा था अब रोशनी है, यही फर्क हुआ ना। इसी तरह बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं ये समझ के कि ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब जिंदगी में कुरान की रोशनी जलती है ना, फिर पता चलता है ये तो कितना गलत कर रही थी मैं, सांप को रस्सी पकड़ के थामा हुआ था मैंने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए लोगो, ए इंसानियत, अब और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बुरहान भी उतार दी और नूरे मुबीन भी उतार दी, फिर भी क्या अंधेरों में रहना चाहते हो, फिर भी क्या भटकना चाहते हो। देखिए रोशनी हर एक को पसंद होती है, कोई नहीं चाहता अंधेरे में रहना, फिर क्या बात है कि जहालत भी तो अंधेरे हैं लेकिन उनमें शौक से रहते हैं, आना ही नहीं चाहते रोशनी की तरफ। असल में रोशनी की तरफ वो नहीं आना चाहता जो सोया रहना चाहता है, गहरी नींद सोया हुआ। कहता मुझे कोई ना जगाए, मैं अंधेरों में ही ठीक हूं। जो इंसान जागना चाहता है ना और देखना चाहता है सही क्या है और गलत क्या है, वो जरूर नूर में आएगा। फअम्मल्लदीना आमनू बिल्लाही वातसमू बिही, बस वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, वातसमू बिही और उसने उसको थाम लिया। बिही की जमीर अब किस तरफ जा रही है, इसके दो मर्जी हो सकती है। एक तो ये अल्लाह की तरफ जा रही है कि अल्लाह को थाम लिया, तब इसका माना क्या होगा कि जिसने अल्लाह ताला को थाम लिया यानी इस कुरान के जरिए थाम लिया, या अल्लाह पे भरोसा कर लिया, अल्लाह ताला पे भरोसा करके उसको थाम लिया। अल्लाह ताला यानी खुद बुला रहा है कि मेरे पर ईमान ले आओ और मुझे थाम लो। जैसे आप देखें एक छोटा बच्चा होता है ना, वैसे को मिसाल अल्लाह के लिए कोई भी नहीं दी जा सकती, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, अब ना बाप उसकी उंगली पकड़ के रखता है, वो उंगली पकड़ के जब तक रखेगा तो बच्चा सेफ है। अगर बच्चे ने उंगली छुड़ा के कहीं सोचा कि अगर मैं बाप के साथ चलूंगा ये तो मुझे वहां नहीं जाने दे रहा और वहां नहीं, और मैं भाग के सड़क पे चला जाऊं, वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, वो उंगली छुड़ा के अगर जाता है तो क्या है, हलाकत है। आगे तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है, बाप ने जब तक पकड़ा हुआ है उसमें उसकी भलाई है। अल्लाह ताला कहता है वातासिमू जो होता है ना, मजबूती से पकड़ लेना, ये होता है सिर्फ पकड़ लेना नहीं होता, मजबूत चिमट जाना किसी चीज को, चिमट जाओ अल्लाह को मजबूती से थाम लो, अल्लाह का हाथ थाम लो तो वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। और अल्लाह से दूर भागोगे तो फिर गुमराही है सिर्फ। फिरू इल्लाह, अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में फरमाया ना, भाग के आ जाओ अल्लाह की तरफ, सब तुम्हारे जो दुश्मन है इनसे भाग के आ जाओ अल्लाह की तरफ। यहाँ पे भी वातसिमू बिही, चिमट जाओ अल्लाह के साथ, तभी बच सकते हो। आज जितना फितना है इसके बाद जरूरी है कि हम अल्लाह को ही थाम लें, वरना बचत नहीं है। हर तरफ से ईमान के फितने हमें गुमराहियों के अंधेरों में ले जाना चाहते हैं, तरह तरह के फितने हैं। ऐसे में कितनी जरूरत है हम अल्लाह को थाम लें, उस पर भरोसा करें, उसकी तरफ आ जाएं, उसके करीब हो जाएं। थामते तो आप उसको ही है ना जिसके करीब हो, और जिससे दूर भागे हो उसको क्या थामेंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं उस बच्चे की तरह कि करीब होने में उंगली थामने पर पता नहीं मुझे कुछ भी नहीं मिलना, मैं दूर भाग के जाऊंगी ना तो उसमें मैं मॉडरेट कहलाऊंगी और मैं मॉडर्न कहलाऊंगी और उसमें मैं लोगों के अंदर कितनी जबरदस्त कहलाऊंगी और मेरी कितनी वाह वाह होगी, और जितनी अल्लाह के करीब आती जाऊंगी तो पता नहीं बैकवर्ड सी हो जाऊंगी। नहीं है, तुम्हें तो कहा गया तुम चिमट जाओ, मजबूती से थाम लो। तुम हल्का सा थामते हो, डरते भी हो, भागना चाहते हो, और भागने में हलाकत है। अगर पकड़ते भी है ना तो हल्का 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 हल्का, ज्यादा नहीं। उसी से डरते हैं जो आपका रहनुमा है, जो आपका हमदर्द है, जो आपका खैर ख्वाह है। वही मैं जो आपको मिसाल दे रही कि बच्चे ने बाप की उंगली थामी हुई है, वो उसको लगता है कि इसकी वजह से मेरे लिए सारी खराबी है, मजा तो वहां है, मैं भाग के जाऊं मजों में। वो तो इस उंगली को पकड़ने में उसके लिए भलाई थी। दूसरा इसका माना क्या है, वातासमू बिही, ही का मर्जे क्या है, तो उलमा कहते हैं ही का मर्जे वही है नूरुल मुबीन, कुरान, कि इसको मजबूती से थाम लो। जैसे कि हमने पहले भी सूरह आले इमरान में पढ़ा था ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, मजबूत थाम लो, चिमट जाओ इसके साथ, जुड़ जाओ इसके साथ, पेंडुलम की तरह नहीं, वो देखा आपने घड़ियों में, वो क्लॉक्स में पेंडुलम होता है ना, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है, वो इसी तरह चलती है, आ जाते हैं वापस फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं, फिर उधर से आते हैं फिर इधर को निकल जाते हैं। नहीं, चिमट जाओ, ये चिमटना नहीं होता, स्विंग ना करो। हम आते भी हैं मगर पूरे भी नहीं आते। या अय्युहल लदीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ्फा, कहा पूरे के पूरे आ जाओ लोगो, इस्लाम में ईमान वालों पूरे के पूरे दाखिल हो। हम पूरे नहीं दाखिल होना चाहते, पता नहीं किस बात का हमें डर है। तो जब तुम ये कर लोगे ना, तो फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन व फदल, तो वो दाखिल करेगा तुमको उनको, जो ऐसा करेंगे ईमान ला के चिमट जाएंगे अल्लाह के साथ या फिर कुरान के साथ, अगर जमीर ही की कुरान ने, तो वो उनको दाखिल करेगा अपनी रहमत में से और फजल में, अपनी तरफ से रहमत में दाखिल करेगा और अपने फजल में दाखिल करेगा। व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीम, अल्लाह की रहमत जन्नत है, उसका फजल है, और वो उनको सीधे रास्ते, सिराते मुस्तकीम क्या है, सिरात खुले रास्ते को कहते हैं, और आसान रास्ता, सीधे रास्ते की वो अल्लाह खुद रहनुमाई करेगा, अल्लाह खुद लेकर जाएगा, अल्लाह खुद चला देगा, उंगली पकड़ के चला देगा। देखो अगर कुरान को इतना मजबूत थाम लिया ना, तो अल्लाह फिर खुद आपको चला देगा सिराते मुस्तकीम पे। हम दुआ करते हैं ना, इदिना सिरात मुस्तकीम, कैसे हम चलेंगे सिराते मुस्तकीम पे, हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम अल्लाह से चिमट जाओगे, कुरान से चिमट जाओगे, इसको छोड़ना नहीं है बस, ये नहीं कि ये कोर्स है, कोर्स फिनिश हुआ, हम तो ग्रेजुएट हो गए, सर्टिफिकेट अब हमें क्या जरूरत है, अब कुरान की कोई जरूरत नहीं, रख दो इसको साइड में, सर्टिफिकेट तो मिल ही गया, सजा लें उसको दीवारों पे, क्या देगा वो आपको, वो सर्टिफिकेट किस काम का है अगर वो आपको सिराते मुस्तकीम पे ही ना चलाए। तो ये जिंदगी भर के लिए चिमट जाना है, इसको छोड़ा फिसल गए रास्ते से, रास्ते से हट जाना कितना आसान होता है, आप एक हाईवे पे जाते हैं कितने एग्जिट्स आते हैं ना, किसी पे भी आपने अगर टर्न ले लिया तो बस हाईवे छोड़ दी। सिराते मुस्तकीम एक हाईवे है, इसमें बहुत सारे एग्जिट्स हैं, जिस वक्त कुरान को छोड़ेंगे बहुत चांस है कि कोई एग्जिट को ले लेंगे आप, बहुत चांस है, क्योंकि हर तरफ अट्रैक्शंस हैं। कुरान से चिमटने में इंसान के लिए फायदा है, क्योंकि वो सिराते मुस्तकीम पे तभी रह सकता है, तो अल्लाह खुद रहनुमाई करेगा ना, तुम क्यों फिक्र करते हो फिर, अल्लाह खुद चला देगा तुम्हें सिराते मुस्तकीम पे। शर्त क्या है, तुम ईमान लाओ पक्का और चिमटो इससे। यस्तफ्तूनक, अब आखिरी आयत, यानी आप देखेंगे एकदम मौजू बदल गया, आखिरी आयत विरासत की आयत है, आपने 11 और 12 आयत में पढ़ा था ना विरासत के अहकाम, आखिरी आयत में भी विरासत की बात है। ये आयत सूरह निसा के नाजिल होने के बहुत अरसे बाद, पूरी सूरह निसा नाजिल हो चुकी थी फिर ये आयत नाजिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है ना ये जो तरतीब है कुरान पाक की, कि कौन सी आयत कहाँ हो, कौन सी सूरत कहाँ हो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को बताया कि इस आयत को यहाँ पे रखो, इस आयत को इधर लिखो, खुद से नहीं लोगों ने लिख ली, ये तो तौकीफी है, ये अल्लाह की तरफ से ही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको सूरह निसा के आखिर में लिखो। अच्छा अभी आप भी सोचिएगा, अभी मैं आपको आयत बताती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इस आयत का क्या पीछे से रब्त बन रहा है, कोई रब्त बन भी रहा है या नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो क्या बन रहा है, या पे बन ही रहा बिल्कुल। अच्छा सोचते जाए, ये आयत किस बारे में है, कलाला के बारे में, ठीक है। यस्तफ्तूनक, वो फतवा मांगते हैं आपसे, वो सवाल करते हैं आपसे, यानी शरी हुक्म जानना चाहते हैं आपसे, किसके बारे में, कलाला के बारे में। कुल अल्लाह युफ्ती कुम फिल कलाला, कह दीजिए अल्लाह ताला तुम्हें फतवा देता है कलाला के बारे में। कलाला कौन होता है, जिसके मैंने बताया ना तो वालदैन बाप दादा ये वो नहीं है, और ना ही उसके कोई बच्चे हैं, ना बच्चों के बच्चे हैं, कोई भी नहीं है। इनिमरुन, अगर कोई शख्स फौत हो जाए, यानी वो कलाला है, हालांकि फौत हो जाए, लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन, उसके नहीं है कोई वलद, कोई बच्चा नहीं, कोई औलाद नहीं, वलहू उख्तुन, और लिए उसके है एक बहन, फलाह निस्फु मा तरक, तो उसके लिए आधा है जो उसने छोड़ा, यानी तरके में से विरासत में उसके कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है, और औलाद तो है ही नहीं, वालदैन भी नहीं है, तो वो उसके लिए उसकी बहन को आधा मिल जाएगा, बाकी आधा किसको मिलेगा। अब आप लोग सवाल करते हैं, देखें विरासत का कोर्स नहीं है, बाकी असबा में जाएगा, मैं असबा कहूंगी, अब आप कहेंगे कौन है असबा, क्या है वो, फिर यहाँ पे हम नहीं पढ़ सकते इतनी डिटेल में, ये फिर आप विरासत का कोर्स यहाँ तो लें और उसमें पढ़ें, ठीक है। वहुआ यरिसुहा इल्लम यकुल्लहा वलद, और वो खुद वारिस होगा, इल्लम यकुल्लहा वलद, अगर नहीं उस बहन का कोई बच्चा, अगर बहन का कोई बच्चा नहीं है और बहन मर गई है, तो ये भाई, एक ही भाई था उसका, तो वो वारिस बन गया सारे उसके माल का, ठीक है। अगर भाई मर गया, यानी समझ लें दो बहन भाई, उनके ना कोई अगर मिसाल के तौर पे कलाला हम समझते हैं कि आदमी कलाला है, उसकी ना बच्चे हैं ना वालदेन है, उसकी सिर्फ एक बहन है, तो फिर वो आधा बहन को मिल जाएगा जब ये फौत होगा। अब अगर ये बहन फौत हो जाती है तो फिर उसका एक ही भाई है, उसके इस बहन के कोई बच्चे नहीं है, इसके भी वालदेन तो जाहिर दोनों के ही नहीं, तो ये इसके भाई को मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब आपने सिर्फ ये आयत समझनी है, ठीक है, पूरे हम अहकामात उसके उसमें नहीं जा रहे हैं, हालांकि इनमें बहुत डेप्थ होती है, इसे आगे कितने कितने मसाइल उलमा ने निकाले, लेकिन आप इतना ही समझ लें काफी है ये आपके लिए कि। अच्छा अब ये देखे ना, कई कलाला आप सोचते होंगे कि कलाला तो मुश्किल ही कोई होता नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सी लड़कियों की शादियां नहीं होती, शादी ही नहीं हुई तो जाहिर बच्चे नहीं है उनके, और पेरेंट्स भी फौत हो जाते हैं, अब वो जॉब्स वगैरह करती हैं या उनके कोई और उनको जायदाद ये मिली नहीं है उनको कोई उनके नाम पे है, तो अब वो फौत होती है तो फिर किसको मिलेगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए। फइन कैन तस्नतैनि, और अगर एक बहन नहीं है इस आदमी की, दो बहनें हैं, तो उन दोनों के लिए अस्तुलुसानी मिम्मा तरक, तो वो उनके लिए दो बहनों के लिए 2/3 मिलेगा। पहले क्या था, हाफ मिलना था अगर एक बहन होती, अगर एक से ज्यादा यानी दो बहनें हैं तो फिर सुलुसान मिलना। वह इन कैनू इखवत रिजालम व निसान, और अगर उसके सिर्फ बहनें नहीं है, दो बहुत सारे बहन भाई हैं, दो बहनें हो या दो से ज्यादा हो, सबको फिर 2/3 ही मिलेगा, वो 2/3 सब में डिवाइड हो जाएगा, 2/3 निकाला जाएगा और सबको अंदर उसी में से डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर उस आदमी के जो फौत हुआ है वो कलाला था और उसके बहुत सारे बहन भाई हैं, तो फिर क्या होगा, फलेदा करी मित्रु हाजिल उनसा यही, ये पहले भी हमने पढ़ा, तो हर मर्द को डबल मिलेगा औरत की निस्बत, यानी दो औरतों का हिस्सा एक आदमी को मिलेगा। मिसाल के तौर पे किसी के दो भाई और दो बहनें हैं तो कितने हिस्से किए जाएंगे, 6 हिस्से कर लिए जाएंगे, क्योंकि जो दो भाई हैं उनको 4 हिस्से मिल गए 2 each, और दो बहनों को एक एक हिस्सा मिल गया। ठीक है, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तुदिल्लु, अल्लाह ये इसलिए बयान करता है कि तुम गुमराह ना हो जाओ, इसलिए कि इंसान समझता है ना मैं खुद बड़ा समझदार हूं, मुझे पता है कि इसको कितना देना है, नहीं अल्लाह को बेहतर पता है, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम गुमराह हो जाओ। और आपको पता है आधे से ज्यादा झगड़े जो होते हैं वो सिर्फ ये जायदादों के ही होते हैं, जिनकी वजह से इतनी रिफ्ट आ जाती है रिश्तेदारों में, आपस के अंदर इतनी नफरतें और झगड़े और अदालतों में भी केसेस और ये सब कुछ होता है, तो अगर अल्लाह के अहकामात को फॉलो किया जाए तो ये सब चीज ना हो, अल्लाह तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाए। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, इस पे इख्तिताम है सूरत का, इस सूरत में जितनी बातें आई हैं इस आयत में भी और इस सूरत में भी, आपको अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, आपके दिल में उनके लिए रजामंदी हो या ना हो, अल्लाह को बेहतर पता है, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है और उसने ये काम आती है, तो इनमें बेहतरी ही है। आपको चाहे लगे कि आधा क्यों मिल रहा है औरत को, उसको एक पूरा क्यों मिल रहा है, या ये वाला मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, मैं तो अपनी मर्जी से करूंगी, तो आपको ज्यादा इल्म नहीं है, अल्लाह है जो बिकुल्ली शैइन अलीम है। ठीक है, तो बिकुल्ली शैइन अलीम की बात को मान जाओ, अपने आप को ना अकले कुल समझो। अब मुझे बताएं क्या सोचा आपने कि इस आयत का क्या रिलेशनशिप है पिछली आयत के साथ, कोई बंदा ऐसा है इस क्लास में जो इस चीज का जवाब दे दे, हाँ? कि इस आयत का यहां पर क्या बन रहा है ताल्लुक, जबकि ये ऐसे लग रहा है कि ये एक अकेली ही आयत है और पीछे के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जवाब नहीं आ रहा। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पीछे किन की बात हो रही है, अहले किताब की, यहूद नसारा की, ठीक है। अच्छा अब उनको सबसे बड़ा एतराज क्या था, क्यों नहीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बनी इसराइल में से ही कोई रसूल आए, और इस ये बनी इसराइल से रसूल नहीं है, ये बनी इस्माइल से है, तो उनको बता दिया गया यहां पर कि कि अब तुम कलाला हो गए हो। और कलाला में भी क्या है कि अब आगे नहीं कुछ चलना, अब आगे विरासत उसके बच्चों में नहीं चलेगी, अब क्या होगा साइड्स पे चली जाती है, वो बहन भाई जो है उनको मिलती है। और यहां पर भी क्या है, बनी इस्माइल में आ गई, अब तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, अब तुम नबुव्वत के मामले में, रिसालत के मामले में कलाला हो गए। ठीक है, तो ये इसका रब्त है इसके साथ। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे उलमा ने इन आयात के ऊपर गौर व फिक्र करके नुक्ते निकाले हैं, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि वाकई वो कलाला हो गए। अब उनको बता दिया गया कलाला हो गए, अब क्या है, अब ये नबुवत और रिसालत ये बनी इस्माइल में है, जो तुम्हारे कजन है उनके उनके अंदर चली गई है। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। जो आखिरी आयत है इसके बारे में टेबल भी हमने बनाया हुआ है और वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई बात नहीं समझ आएगी तो उस टेबल को देख के, जैसे हमने पहली आयतों का बनाया था इसी तरह आपके लिए मौजूद है, तो उससे बहुत ही इजीली आपको सारी बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तिलावत सुनते हैं।
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.